नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जेन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तत् साधु मन्ये असुरवर्ज देहिनाम् तत्साधु मन्ये असुरवर्ज देहिनाम् सदा समुद्रग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत तत् साधु मन्ये असुरवर्ज देहिनाम् सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। तत् साधु मन्ये असुरवर्ज देहिनाम् सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत
तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम् सदा समुद्विग्न धियाम् असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यत् हरिम् आश्रयेत।
तत् साधु मन्ये सुरवर्ज देहिनाम् सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत।
श्री प्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्येय शुर्वर्य देहिनाम् सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत।
श्रीप्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये शुरवर्य देहिनाम् सदा समुद्वेग्याम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपम् वनं गतो यदि हरिमाश्रयेत।
श्रीप्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम् सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपम् वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत।
तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम् सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत।
सदा श्रमोद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत।
श्रीप्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम् सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत।
श्रीप्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम् सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत।
तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम् सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत।
श्रीप्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये सर्वाय देहिनाम् सदा समुद्विग्धियाम सद्ग्रहात् हित्वा त्वं पातं गृहमन्दकूपम् वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत।
तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असद्गृहात् हित्वात्मपातं गृह अन्धकूपम् वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत।
श्री प्रह्लाद उवाच। प्रह्लाद महाराज ने कहा तत् वह साधु अत्यंत उत्तम अथवा जीवन का श्रेष्ठ अंश मन्ये मानता हूं असुरवर्य हे असुरों के राजा देही नाम शरीरधारियों का सदा सदैव समुद्विग्न चिंताओं से पूर्ण धियाम जिसकी बुद्धि असत ग्रहात क्षणिक शरीर या शारीरिक संबंधों को असली मानने के कारण यह सोचते हुए कि मैं यह शरीर हूं और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है हित्वा त्याग कर आत्मपातम स्थान जहां जाकर आत्म साक्षात्कार रुक जाता है गृहम देहात्म बुद्धि या गृहस्थ जीवन अंधकूपम जो मात्र अंधा कुआं है जहां जल नहीं होता किंतु फिर भी लोग जल की तलाश करते हैं वनम जंगल में गतः जाकर यत जो हरिम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्रयेत शरण लेता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद प्रह्लाद महाराज ने उत्तर दिया हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहां जल नहीं रहता केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्टार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए जहां केवल कृष्ण भावना अमृत व्याप्त है और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। तात्पर्य हिरण्यकश्यपु ने सोचा था कि प्रह्लाद अभी छोटा सा अनुभवहीन बालक मात्र है अतएव वह कुछ ऐसा उत्तर देगा जो मन को भाने वाला होगा व्यवहारिक नहीं होगा किंतु प्रह्लाद महाराज ने उच्च भक्त होने के कारण शिक्षा के सारे गुण प्राप्त कर लिए थे। जस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बही। जिसकी कृष्ण में अविचल भक्तिमय श्रद्धा होती है वह निरंतर कृष्ण तथा देवताओं के सारे सद्गुण प्रकट करता रहता है, किंतु जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति नहीं होती उसमें सद्गुण नहीं पाए जाते, क्योंकि वह मानसिक कल्पनाओं के द्वारा भौतिक जगत में व्यस्त रहता है जो भगवान का बाह्य स्वरूप है। भागवत 5:18-12 तथा कथित शिक्षित दार्शनिक तथा विज्ञानी जो भौतिक स्तर को प्राप्त होते हैं सत और सत अर्थात शाश्वत तथा असत अर्थात क्षणिक में अंतर नहीं कर पाते। वैदिक आदेश है असतो मा ज्योतिर्गमय। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि नश्वर स्तर को त्याग कर शाश्वत स्तर को प्राप्त करे। आत्मा शाश्वत है और शाश्वत आत्मा विषयक कथाएं वास्तविक ज्ञान है। अन्यत्र कहा गया है अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। जो देहात्म बुद्धि से जुड़े रहते हैं और जो भौतिक इंद्रिय सुख के स्तर पर गृहस्थ के रूप में जीवन से चिपके रहते हैं वे शाश्वत आत्मा के कल्याण को नहीं देख सकते। प्रहलाद महाराज ने इसकी पुष्टि यह कहकर की कि जो व्यक्ति जीवन में सफलता की आकांक्षा करता है उसे सही स्रोत से तुरंत यह समझ लेना चाहिए कि उसका स्वार्थ किसमें है और आध्यात्मिक चेतना में वह अपने जीवन को किस प्रकार ढाले। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को कृष्ण का अंश समझे और निश्चित आध्यात्मिक सफलता के लिए उनके चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित हो ले। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति देहात्म बुद्धि के कारण जन्म जन्मांतर कठिन जीवन संघर्ष करता रहता है। अतएव प्रहलाद महाराज ने संस्तुति की है कि इस बारंबार जन्म मृत्यु की भौतिक दशा को रोकने के लिए मनुष्य को वन में चले जाना चाहिए। वर्णाश्रम प्रणाली में मनुष्य पहले ब्रह्मचारी बनता है, फिर गृहस्थ, तब वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी। वन जाने का अर्थ है वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना, जो गृहस्थ जीवन तथा सन्यास के बीच का जीवन है, जैसा कि विष्णु पुराण 3:8-9 में पुष्टि की गई है। वर्णाश्रमा चारवता पुरुषेण परह पुमान विष्णुराराध्यते। वर्ण तथा आश्रम की प्रथा को स्वीकार करके मनुष्य अपने को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा करने के स्तर तक बड़ी आसानी से उठा सकता है। अन्यथा यदि वह देहात्म बुद्धि में रहता जाता है तो वह इसी संसार में सड़ता रहता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र श्रेणियां होनी चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को क्रमशः ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी बनना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने संस्तुति की कि उनके पिता को वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि देहात्म बुद्धि के कारण वे और अधिक आसुरी मनोवृत्ति वाले हो रहे थे। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता से कहा कि उनके लिए वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना श्रेयस्कर होगा, न कि गृहस्थ के रूप में गृहम अंधकूपम में गहरे गिरते जाना। अतएव हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विश्व के समस्त पुरुषों को वृंदावन आने के लिए तथा यहाँ पर निवृत्त जीवन बिताने और कृष्ण भावना में उन्नति करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की।
श्री प्रहलाद महाराज अपने पिता को उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये कथा इस प्रकार है। श्री नारद जी कहते हैं भगवान शुक्राचार्य असुरों के द्वारा पुरोहित के पद पर नियुक्त किए गए, स्वीकार किए गए। भगवान शुक्र काव्य कवि के पुत्र श्री शुक्राचार्य पौरोहित्याय भगवान वृत काव्य किलासुरय, समस्त असुरों ने एक मत होकर के बहुत शक्तिशाली शुक्राचार्य को अपने पुरोहित पद पर स्वीकार किया। शुक्राचार्य को यहां भगवान कहा जा रहा है। भगवान का अर्थ होता है बहुत शक्तिशाली। ये शुक्राचार्य मेडिकल साइंस में सबसे बड़े विद्वान हैं। जो मरे हुए लोगों को जिला देते हैं, देवताओं का युद्ध हुआ असुरों के साथ जिसे देवासुर संग्राम कहते हैं, समुद्र मंथन के बाद तो देवताओं को बहुत क्रोध हुआ और देवताओं ने बहुत से असुरों का वध कर दिया। यहां तक कि इंद्रदेव अपने प्रतिद्वंदी बलि महाराज को पर वज्र मार दिए तो बलि महाराज मर गए। तो दैत्य बड़े निराश हुए तो बलि महाराज के शव को लेकर के वे गए शुक्राचार्य के पास। तो शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि महाराज को जीवित कर दिया। तो ऐसी शक्ति उनमें होए, इसीलिए श्री नारद जी उनको भगवान कह रहे हैं। भगवान काव्य, भगवान काव्य शुक्राचार्य असुरहि पौरोहित्याय वृतः, असुरों के द्वारा पुरोहित पद पर स्वीकार किए गए, वृतः वरण किए गए। तो शुक्राचार्य गुरु थे हिरण्यकश्यपु के और सभी असुरों के, तो स्वाभाविक ही उनके दो पुत्र दैत्यराज के घर के पास रह करके राजमहल में ही बच्चों को असुर बालकों को पढ़ाया करते थे। तो उसी विद्यालय में श्री प्रहलाद महाराज भर्ती किए गए। चूंकि ये राजा के पुत्र थे हिरण्यकश्यपु के, अतः इनको पढ़ाने के लिए स्पेशल चेतावनी दी गई गुरु पुत्रों को, संड और अमर को। ये लोग पढ़ा रहे थे तो राज्ञा प्रापितम बालम, राजा ने स्वयं विद्यालय में भर्ती किए प्रहलाद को, और अन्य भी बालक थे प्रहलाद महाराज के समवयस्क के असुर बालक, उन सबको पढ़ा रहे थे। पाठ्यान, पाठ्यान का अर्थ है जिस जो पढ़ाने लायक था, जो सिलेबस बनाया गया। कौन बनाया? हिरण्यकश्यपु। तो पाठ्य के दो अर्थ हैं, पढ़ाने लायक बच्चे और पढ़ाने लायक विषय। पाठ्यान बालकान और बालम प्रहलादम पाठया मासतु, पढ़ाते थे। राजा का पुत्र है और राजा का खास विद्यालय है राजभवन में ही, तो लोग बहुत तन्मयता से पढ़ा रहे थे प्रहलाद को और बच्चों के साथ। तो जब उन लोगों को विश्वास हो गया कि पढ़ लिया, तब वे राजा के पास ले गए। प्रहलाद महाराज को। जो कुछ पढ़ाया जाता था श्री प्रहलाद महाराज उसको पढ़ लेते थे। जो वो लोग पढ़ाते थे वो पूरा का पूरा पढ़ लेते थे प्रहलाद, और सुना देते थे सुश्रुत सवेनु को पाठ च, उनको सुना देते थे। गुरुजी जो पढ़ाते थे उसको ये पढ़ लेते थे, सुना देते थे, सुनते थे और फिर सुना देते थे। सुश्रुषवे अनुपपाठ च, और जब लोग बोलते थे याद हो गया तो ये अनुपपाठ, तो ठीक वैसा ही पढ़ देते थे। पुस्तक देख करके नहीं, याद हो जाता था प्रहलाद महाराज तो सुना देते थे। जब विश्वास हो गया सन डमर्क को कि यह बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया, तब राजा के पास ले गए इनाम लेने के लिए कि हम अच्छा से पढ़ाए हैं। और श्री प्रहलाद महाराज खूब अच्छा सुनते थे और पढ़ देते थे, सुना देते थे, परंतु मन में अच्छा नहीं मानते थे। न मैंने मनसा साधु, अच्छा नहीं मानते थे। क्यों? कि इस पढ़ाई में यह हमारा है, यह शत्रु है, मित्र है, हमेशा कंपटीशन की भावना रहती थी। ये हमारा है, ये तुम्हारा है, यही द्वंद्व लगा रहता था, जैसे आज की शिक्षा में है। कोई भगवान के बारे में भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं, ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं, हमेशा बस हमारा नंबर आ जाए, हम फर्स्ट हो जाए, पास हो जाए, और दूसरे पढ़े या न पढ़े, दूसरे को दबा करके हम आगे बढ़ जाए, यही आज की शिक्षा में है। तो प्रहलाद महाराज को ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी शिक्षा, पर सिलेबस में थी पढ़ाई तो पढ़ देते थे, सुना देते थे, मन से अच्छा नहीं मानते थे। तो वे लोग गुरु लोग सोचे कि राजकुमार को पढ़ा करके हमको इनाम मिलेगा, वे ले गए राजा के पास। तो राजा गोद में बैठाया प्रहलाद को, बहुत प्यार किया और पूछा, पप्रच्छ कथ्यताम वत्स, यत् साधु मन्यसे भवान। बेटा तुम सुनाओ, तुमको क्या अच्छा लगता है? पढ़ाई की बात तो नहीं पूछा, सबसे पहले पूछा कि तुम क्या अच्छा मानते हो। साधु, साधु माने अच्छा, तुमको क्या अच्छा लगता है? उसके कहने का आशय यही था, पढ़ाई में से बताओ क्या अच्छा पढ़े हो। लेकिन उसने शब्द का प्रयोग किया कथ्यताम वत्स, मनसे साधु जद भवान, तुम जो अच्छा समझते हो उसे सुनाओ। तो श्री प्रहलाद महाराज क्या अच्छा समझते थे सुना रहे हैं। उन्होंने सुनाया कि हे असुर वर्ज, हे असुरों के राजा, इस जगत में देही देही नाम सभी देहधारी जीवों के लिए, जिनकी बुद्धि सदा उद्विग्न रहती है, चिंताग्रस्त रहती है, उनके लिए मैं सबसे अच्छा यही मानता हूं कि घर गृहस्थी को छोड़कर वे वन में चले जाएं और भगवान कृष्ण का भजन करें, आश्रय लें, इसी को मैं अच्छा मानता हूं। तत्साधु मन्ने असुरवर्ज देहिना सदा समुद्विग्न ध्याम सदग्रहा। इस संसार में प्रत्येक देहधारी जीव सदा उद्विग्न रहता है, चिंतित रहता है। क्यों? असद ग्रहात्, असद जो नहीं रहेगा, टेम्पोररी या क्षणिक जो वस्तुएं हैं, शरीर, उसी शरीर को और शरीर के संबंधी वस्तुओं को व्यक्ति स्थायी बनाना चाहता है, तो पकड़ कर रखा है, तो वे अस्थायी रह नहीं सकते। इसी से सभी जीव चिंता में रहते हैं, उद्विग्न धियाम, उनकी बुद्धि डिस्टर्ब रहती है, बहुत दुखी रहते हैं। तो ऐसे प्राणियों के लिए हे असुरवर्ज, मैं यही अच्छा मानता हूं कि घर छोड़ करके, गृहम त्यक्त्वा, घर छोड़ करके कहीं वन में जा करके भगवान हरि का आश्रय ले ले, यही अच्छा मानता हूं। प्रकारांतर से उन्होंने कह दिया कि आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए मैं यही अच्छा मानता हूं कि बहुत दिन घर में रहे, अब इस अंधकूप को छोड़कर, हितवात्म पातम गृहम अंधकूपम, यहां गृहम का अर्थ है गृहम शरीरम मानुष्यम। भगवान ने बताया है कि मनुष्य का शरीर ये गृह है, और गृहम का अर्थ एक और होता है न गृहम गृहमित्याहुर गृहिणी गृह उच्यते। गृह को गृह नहीं कहते हैं, गृहिणी को गृह कहते हैं। गृह का अर्थ है ग्रहण करना, पकड़ लेना। तो इस संसार में व्यक्ति दो वस्तु से अधिक पकड़ा गया है, एक तो शरीर से और दूसरा स्त्री से। तो इसीलिए गृह कहते हैं शरीर को या स्त्री को। तो हित्वा गृहम, गृह छोड़ करके, श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम ले करके, स्वीकार करके, और वनम गतः, वन में जा करके, हरिम आश्रय, हरि का आश्रय लेना चाहिए, इसी को मैं अच्छा मानता। इसके अलावा सब बेकार है। अच्छा यही है कि वन में जा करके भगवान कृष्ण का भजन किया जाए। इस श्लोक में श्री प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु को संबोधन कर रहे हैं, असुर वर्ज, हे असुर श्रेष्ठ। उसने पूछा क्या अच्छा मानते हो, तो एक शर्त लगा दिया, देही नाम और सदा समुद्विग्न धियाम। जो जीव इस प्राकृत जगत में दुखी हैं, उद्विग्न बुद्धि वाले हैं, उनके लिए क्या अच्छा मानते हो। श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि उसने तो सीधा इतना ही पूछा कि क्या अच्छा मानते हो, तो श्री प्रहलाद जी सीधा उत्तर दे रहे हैं तत्साधु मन्य, मैं इसी को अच्छा मानता हूं सबके लिए। देही नाम जिसने देह धारण किया है, ये भौतिक देह स्वीकार किया है या देह मिला है और बुद्धि सदा टेंशन में है, ऐसे लोगों के लिए मैं यही अच्छा मानता हूं कि घर छोड़ करके वन में जा करके भगवान विष्णु का भजन किया जाए, उनका आश्रय लिया जाए। हरिम आश्रयेत, श्री प्रहलाद महाराज ने यह भी बताया क्यों बुद्धि टेंशन में रहती है, क्यों डिस्टर्ब रहती है, क्यों दुखी है जीव, क्योंकि असद ग्रहात असद को पकड़ करके रखना चाहता है। जो वस्तु रहेगी नहीं, जो टेम्पररी है, दो दिन के लिए मिली है, क्षण भर के लिए मिली है, परंतु है वो नाशवान, उसी को वो अविनाशी बनाना चाहता है। तो बुद्धि तो डिस्टर्ब होगी ही, हम चाहते हैं कि हमारा शरीर बना रहे, परिवार बना रहे, सब सुखी रहे और प्रकृति होने नहीं देगी, इस संसार का ही स्वभाव है। कितना भी व्यक्ति अपने परिवार को बना करके रखना चाहे, अपने देश को बना कर रखना चाहे, लेकिन अपने मन के विरुद्ध होता रहता है यहां, इसीलिए बुद्धि डिस्टर्ब रहती है। तो व्यक्ति अगर क्षणिक या असद वस्तुओं को टिका करके रखना चाहता है तो यही दुख का कारण है। बुद्धि चिंता में रहेगी, मन हमेशा टेंशन में रहेगा, इसलिए मैं तो यही अच्छा मानता हूं कि ये सब छोड़ छाड़ करके वन में जा करके भगवान कृष्ण का आश्रय लिया जाए और गृहस्थ जीवन को प्रहलाद महाराज ने कह दिया कि आत्मपातम, ये आत्मा का पतन कराने वाला है। घर गृहस्थी में, गृहस्थ जीवन में किसी को कोई सुख नहीं मिलता है, जबकि व्यक्ति परिवार बनाता है, घर बनाता है, पत्नी स्वीकार करता है, बच्चा उत्पन्न करता है, किसके लिए? सुख के लिए, कि पत्नी से मुझको सुख मिलेगा, बच्चों से सुख मिलेगा, पर मिलता नहीं है। गृहस्थ जीवन को ऐसा कुआं कहा कह रहे हैं प्रहलाद, जो अंधकूप है, अंधकार से भरा हुआ कुआं, अज्ञान से भरा हुआ कुआं। व्यक्ति आशा लगाए है कि हमको इसमें जल मिलेगा, इस कुएं में, लेकिन उसमें जल मिलता नहीं है, तो गिर पड़ता है उसमें, जैसे कोई पशु तीर्ण के लोभ से कुआं में गिर जाए, तो कुआं के मुख पर हरी हरी घास रहती है और उसको चरने के लिए बैल या भैंस जाती है, उसको चरना चाहती है, लंबी लंबी घास, हरी हरी घास, तब तक उसी में धड़ाम से गिर जाता है। तो पानी कहां से मिले और सुख कहां से मिले, वो घास भी नहीं चर पाता है, गिर जाता है और गिर जाने के बाद पुनः निकल नहीं सकता। निकलने का उपाय है कि पहले ब्रह्मचर्य जीवन स्वीकार करे, ब्रह्मचारी बने, फिर वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करे, लेकिन वो कोई उपाय नहीं करता है, और गिर गया तो गिर गया, और ऐसा गिर जाता है कि दूसरे लोग देखते भी नहीं है कि गिरा हुआ है। कोई बैल गिर जाए अंधेरे कुएं में, तो अंधेरे कुएं मतलब रिजेक्टेड कुआं जिसमें कोई पानी भरने जाता नहीं है, उसमें गिर जाए तो पता भी नहीं लगता है कोई जीव गिरा है। पता लगे तो बहुत मुश्किल से 10-20 लोग मिल करके निकालेंगे। तो जल नहीं है पर गिर गया, गिरने से सिर फूट गया, हाथ पैर टूट गया, यही मिलता है, सुख तो मिलता नहीं। इसीलिए गृहस्थ जीवन की उपमा प्रहलाद महाराज अंधकूप से दे रहे हैं, अंधेरे कुएं से। वो कुआं जिसमें केवल अंधकार है, जल नहीं है और पत्थर है नीचे और सांप हैं, मच्छर हैं, इसमें गिर जाएगा तो कितना दुखी होगा। सुख के लिए व्यक्ति गृहस्थ जीवन स्वीकार करता है, पर किसी को सुख मिलता है क्या? गृहस्थों को देखना चाहिए, ये तो किसी के लिए भी है, ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो या वानप्रस्थ, कोई सुखी नहीं है। जबकि सारा सामाजिक जो व्यवस्था है वो इसी के लिए है कि हम सुख पा लेंगे, सुख पा लेंगे। अच्छा, इस साल नहीं तो अगले साल, तो 5 वर्ष के बाद ये पंचवर्षीय योजना के द्वारा हम सुखी हो जाएंगे। पंचवर्षीय क्या, पूरा जीवन भर योजना बनाते रहेंगे पर सुख हमेशा दूर चला जाएगा, सुख मिलता नहीं। व्यक्ति सोचता है अब विवाह हो गया, अब मैं निश्चिंत हो गया, पत्नी हमारे सुख का साधन होगी, हमारे लिए भोजन बनाएगी, घर का काम करेगी और बच्चे पढ़ेंगे, सब कुछ होता है, लेकिन सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। इसीलिए इस गृहस्थ जीवन को श्री प्रहलाद कह रहे हैं अंधकूपम। पिताजी, अच्छा है कि इस अंधकार भरे हुए कूप से निकल करके, हित इसको छोड़ करके और वनम गतः वन में जाया जाए, और वहां जा करके हरे कृष्ण महामंत्र जपा जाए, इससे सुख मिलेगा। मैं इसी को अच्छा मानता। यह शरीर ही अंधकूप है, मनुष्य का शरीर अज्ञान भरा हुआ है, अज्ञान ही अंधकार है, अज्ञान भरा है कि ये मैं देह हूं। वास्तव में जीव देह नहीं है, देह वाला है, लेकिन वो मानता है कि मैं ही देह हूं। ये बहुत ज्यादा अज्ञान है, देह मेरा है केवल इतना ही मान करके रहे तो कुछ सुविधा है, मेरा देह है तो एक दिन छूट जाएगा, लेकिन मैं ही देह हूं, ये घोर अज्ञान है। किसी से पूछिए नाम या उसका पता, तो वो देह का ही पता बताएगा। मैं सांवला हूं या गोरा हूं, मैं इस गांव का हूं, मेरे इतने संबंधी हैं, ये सब देह का ही परिचय है। और समाज भी मनुष्यों का ऐसा मिला है कि आपके अज्ञान को बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा, आईडी बना करके देता है। तो आईडी किसका है? देह का ही ना। मेरा जन्म इस तिथि को हुआ, आत्मा का कभी जन्म होता ही नहीं है और कभी मरेगा नहीं, परंतु हम लोग मानते हैं कि हमारा जन्म इस डेट को हुआ, मैं इतने साल का हुआ, मैं देह हूं और देह के संबंधी मेरे हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, इसी अज्ञान में जीवन पूरा बीत जाता है। हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमारा वास्तव में कौन है, ये हम जान ही नहीं पाते हैं, अज्ञान में बीत जाती है जिंदगी। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान ही तिमिर है, अंधकार है, उसी अज्ञान में मैं करते हुए, मेरा करते हुए बीत जाता है। मनुष्य जीवन में कभी भी थोड़ा लाइट नहीं मिलता, थोड़ा प्रकाश नहीं मिलता, बहुत कठिनाई से और बहुत प्रयास करके तब थोड़ा थोड़ा ज्ञान उत्पन्न होता है। यदि भगवान की कृपा हुई तो किसी संस्था से संपर्क जुड़ता है, कैसी संस्था से, कृष्ण भावना भावित संस्था से, किसी व्यक्ति से, किसी भक्त से संपर्क जुटता है, लेकिन संपर्क जुटने पर भी ज्ञान हो नहीं पाता है, जबकि ज्ञान हो सकता है। अपना ज्ञान जो अपना है, श्री भगवान अपने हैं, तो पता चलेगा कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मेरे हैं और कृष्ण के सुख पर हमारा अधिकार है, परम सुखी होने का अधिकार है, वो सुख प्राप्त कर सकते हैं भगवान का नाम जप करके, भगवान को प्रणाम करके, भगवान की कथा सुन करके। तो बहुत कम ऐसे मनुष्य हैं जो अपना काम कर पाते हैं। अपना काम है वो यही जो प्रह्लाद महाराज बता रहे हैं, हरिम आश्रय, तो हरि का आश्रय लेना, इसी से हम सुखी हो जाएंगे, इसी को श्री प्रह्लाद अच्छा मानते हैं। परंतु हम लोग अपने मन में रखे हैं कि क्या अच्छा है, अलग अलग आइडिया है। घर गृहस्थी में फंसे हैं, घर के काम धंधा को ही अपना काम समझ रहे हैं, व्यस्त हैं, यहां जाना वहां जाना, इस काम को करना ये जरूरी है, इसी आइडिया में फंसे हुए हैं और दुख बढ़ता जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि दुख कुछ कम हो रहा है, दुख बढ़ रहा है और सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सारा प्रयास दुख में ही जा रहा है। इसीलिए इस प्रयास को बंद करके और भगवान के धाम में जा करके भगवान का आश्रय ले लें। पिताजी ने तो पूछा है कि तुम अच्छा क्या मानते हो, तो श्री प्रह्लाद ने कहा कि सबके लिए, प्रत्येक देहधारी के लिए मैं यही अच्छा मानता कि घर छोड़ करके निकल जाए, वन में रहे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस वन का मतलब है वृंदावन, घर छोड़ करके वृंदावन जाए, जहां भगवान की भक्ति का वातावरण है, हरि हरिम आश्रयत, हरि का आश्रय ले, हरि का आश्रय लेना चाहिए, इस श्लोक में यह अर्थ है। आश्रयत हरि का आश्रय लेना चाहिए, जो हरि, हरि का अर्थ ही है जो शरणागत के दुख को हर लेते हैं। हमारे जन्म मरण की श्रृंखला को ये हर लेंगे, बहुत सुंदर हैं अपने सौंदर्य से, अपने बांसुरी से, अपने नुपुर से हमारे मन को हर लेंगे और हमारे सांसारिक दुख को हर लेंगे। ऐसे हरि का आश्रय लेना चाहिए, यही मैं अच्छा मानता हूं। इन शब्दों के द्वारा ये हिरण्यकश्यपु को बताया जा रहा है कि अब आप वानप्रस्थ जीवन लीजिए। वानप्रस्थ का मतलब है वन के तरफ प्रस्थित हो जाना, वन के तरफ प्रस्थान करना, और वन में प्रस्थान करने का मतलब है कि भगवान को रिझाने वाला काम करना। प्रत्येक व्यक्ति को निश्चय करना चाहिए अब हम जीवन को बेकार नहीं जाने देंगे, भगवान का नाम जपेंगे। आज से ही दृढ़ संकल्प होना चाहिए सबका, क्योंकि सभी जीव इस देह में पड़े हैं, नश्वान देह में। नश्वान देह है परंतु इसी से भजन होगा, तो भजन करने के लिए ही भगवान ने देह दिया है, भोग भोगने के लिए नहीं। भोग कुछ मिलेगा ही नहीं, और भोग भोगते भोगते हम कई जन्म बिता चुके हैं, भोगों से कोई लाभ नहीं। तो ये शास्त्र श्रवण है, भागवत सुन रहे हैं, तो भागवत के एक एक शब्दों पर विचार करना चाहिए। ये किसके लिए प्रहलाद महाराज अच्छा मान रहे हैं? हम लोगों के लिए ही। हमारे लिए क्या अच्छा है, इसको जितना प्रहलाद महाराज जानते हैं उतना हम भी नहीं जानते हैं। हम लोगों को मालूम नहीं कि हमारा हित किसमें है, लेकिन श्री प्रहलाद जी को मालूम है, हिरण्यकश्यपु को मालूम नहीं है। उस समाज में असुरों को कुछ भी मालूम नहीं था, वे सब केवल भोगों के लिए काम कर रहे थे। और हिरण्यकश्यपु कितना सफल व्यक्ति था, उतना कोई क्या कमा सकता है, स्वर्ग को अपने हाथ में कर लिया था, सारा वैभव उसके अधिकार में था, सारी स्त्रियां उसके सुख के लिए रखी गई थी, लेकिन फिर भी वो बहुत डिस्टर्ब था, सुखी नहीं था, दुखी था, दूसरों से ज्यादा दुखी था। तो इतने बड़े सफल व्यक्ति के सामने श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि घर छोड़ करके वन में जाकर के भगवान कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, यही अच्छा है, इसके अलावा सब बुरा है। श्रीमद् भागवत से सब संदेश मिलता है, श्री प्रहलाद महाराज का निर्णय विचारणीय है, श्री नारद मुनि का उपदेश विचारणीय है। श्री प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यपु को संबोधन किया असुर वर्ज, हे असुरों के राजा। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज की बात को सुना, उसने सुना ध्यान से कि प्रह्लाद की सारी बातें विष्णु की प्रशंसा करने में है, विष्णु के पक्ष की बात कर रहा है, तो उसको शंका हो गई कि यही सिखाया है इन गुरुओं ने, ये शुक्राचार्य के पुत्र ये हमारा वेतन लेते हैं, हमसे वेतन लेते हैं और काम कर रहे हैं विष्णु का, ये कपटी है। तो तुरंत उन गुरुपुत्रों पर क्रोधित हो गया, प्रह्लाद पर हंसने लगा। प्रह्लाद पर क्रोध नहीं किया, हंसने लगा, ये बचकानी बुद्धि है, कोई सिखा दिया इसको, हमारे शत्रु के पक्ष का अर्थात विष्णु के पक्ष का कोई आ करके सिखा दिया तो बिगड़ गया। अरे ब्रह्मपुत्रों, ब्राह्मण के पुत्रों, यही पढ़ाने के लिए मैं भेजा था, असारम ग्राहित्व बारु, तुम लोगों ने बच्चे को असार शिक्षा दे दिया। असार का अर्थ है जिसमें कोई सार नहीं है, और वास्तविक अर्थ है कि जिससे बढ़ करके कोई सार नहीं है। क्यों ऐसा किया? तुम लोग लगता है कि विष्णु के पक्ष के हो और यहां नौकरी कर रहे हो असुर पक्ष का हो करके। हमको मालूम नहीं था कि इतने कपटी तुम लोग हो, इस बच्चे को विष्णु भक्ति पढ़ा दिया, तुरंत तलवार खींच लिया। वे ब्राह्मण तो थरथर कांपने लगे, केवे शिक्षा दिया? तो वे बोले, नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते सतवेंद्र शत्रु। सरकार, हम ब्राह्मण हैं, कमजोर हृदय के हैं, कमजोर शरीर के हैं, आपके क्रोध से ही हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा, आप क्रोध को रोकिए, हम लोगों के प्रति दोष दृष्टि मत कीजिए, हम इसको नहीं सिखाए। मया न प्रणीत, हमारे द्वारा ये पढ़ाई नहीं की गई। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, तब कोई दूसरा पढ़ाया तुम्हारे विद्यालय में आ करके, तुम लोग क्या देख करते हो, देख रेख करते हो? तो वो कहते हैं, न पर प्रणीतम, कोई शत्रु पक्ष का व्यक्ति आकर के पढ़ाया नहीं, या कोई दूसरा पढ़ाया नहीं, तो इसको ये बुद्धि कहां से आ गई? तुम नहीं पढ़ाए, कोई नहीं पढ़ाए, बिना पढ़ाए बोल रहा है। तो लोग कहते हैं, नैसर्गिकी बुधिरस्य राजन, हे राजा, इसकी स्वाभाविक बुद्धि है जन्म से ही। इन बेचारों को क्या पता था कि कयाधु माता के गर्भ में ही ये बच्चा सब सीख करके आया है नारद मुनि की कृपा से। नारद जी में ये शक्ति है कि गर्भस्थ शिशु को भी ज्ञान दे सकते हैं। जब प्रह्लाद गर्भ में थे उस समय नारद जी उनकी माता को ज्ञान दे रहे थे, भक्ति विज्ञान। और प्रहलाद उसको समझ गए, बल्कि प्रहलाद महाराज अधिक समझ गए। माता कयाधु वो तो चिंता में थी कि पति घर पर नहीं है, तो बच्चे का जन्म होगा कौन पालन करेगा, बच्चा गर्भ में था तभी खतरा आ गया शत्रुओं का। इंद्र को पता लगा कि हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया है और तपस्या में चींटियां खा गई उसको, तो बहुत प्रसन्न हुए। सब देवताओं ने पूरी तैयारी करके हिरण्यकश्यपु के राजधानी पर आक्रमण कर दिया और प्रहलाद महाराज की माता को हर लिया। देवराज इंद्र ले जा रहे थे कि इसके गर्भ में बच्चा है, यह भी एक सेकंड हिरण्यकश्यपु ही होगा, अतः इसको ले चलना चाहिए और जब गर्भ से बाहर निकलेगा तो इस बच्चे को कत्ल कर दूंगा। वो बेचारी रो रहे थे, जानती थी कि हमारे बच्चे को मारने के लिए ले जा रहे हैं, वो रो रही थी बहुत। तो नारद मुनि रास्ते में मिल गए और देवराज इंद्र से कहे, क्यों देवराज देवता होकर के तुम दूसरे की पत्नी का अपहरण करके ले जा रहे हो? तब देवराज इंद्र ने बताया कि हे मुने, मैं इसके गर्भ की, इसके बच्चे की हत्या करने के लिए ले जा रहा हूं। आपको मालूम है ना कि ये हिरण्यकश्यपु का अंश है, तो एक हिरण्यकश्यपु तो इतना जगत को तबाह किया, देवताओं को दुख दिया, और ये भी हिरण्यकश्यपु का अंश हो, जब उत्पन्न होगा कितना भयानक होगा। तो इसीलिए मैं ले जा रहा हूं, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, जब प्रसव होगा बच्चे को मार दूंगा और इसको छोड़ दूंगा। तब नारद मुनि ने कहा, नहीं नहीं, तुम इसके बच्चे को मार नहीं सकते, तुम में कोई शक्ति नहीं है, ये बहुत बलवान है, भगवान का परम भक्त है, इस भक्त की हत्या तुम नहीं कर सकते हो। जब देवराज इंद्र ने सुना क्या ये भक्त होगा, तो ये सुन करके छोड़ दिए और परिक्रमा किए परम आदर से। अभी बच्चा गर्भ में है तो उसकी परिक्रमा की, उसके मां की परिक्रमा भी, एक दैत्य की परिक्रमा, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ इंद्र भगवान परिक्रमा कर रहे हैं, अभी बच्चा गर्भ में है, उसकी परिक्रमा किए और प्रणाम करके कयाधु को छोड़ दिए। जो श्री नारद जी बद्रिकाश्रम में ले गए कयाधु को और वहीं बद्रिकाश्रम में रह करके उसको आश्वासन दिए कि अब तुम डरो मत, कोई कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे बच्चे को या तुमको कोई कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा, तुम निश्चिंत रहो। तो कयाधु नारद मुनि के आश्रम में, आश्रम मतलब उनके मित्र के आश्रम में, दूसरे ऋषि का आश्रम था, वहीं वह रहती थी। और जब नारद जी ने कह दिया तुम भय मत करो, तो निश्चिंत हो गई, अब डर खत्म हो गया कि हमारे बच्चे को कोई मारेगा। नारद जी में बहुत शक्ति है ना, तो वे वहीं रह करके उसको ज्ञान देने लगे, भक्ति का उपदेश करने लगे। ये उद्देश्य था उनका कि इसके गर्भ में रहने वाला बच्चा भक्ति विज्ञान प्राप्त कर ले। इसके साथ ही कयाधु को भी ज्ञान हो जाए। तो बेचारी चिंता में फिर भी रहती थी कि हमारे पति कब आएंगे, जब वे आएंगे तो उनकी उपस्थिति में मैं बच्चे को जन्म दूंगी, बच्चे का प्रसव करूंगी जब पति देव साथ रहेंगे, घर में रहेंगे। और कभी कभी भय होता था कि पता नहीं बीच में कौन खतरा आ जाएगा बच्चे पर। अभी देवराज इंद्र मारने के लिए ले जा रहे थे वज्र हाथ में लेकर के, तो नारद जी बचा लिए भगवान की कृपा से। फिर चिंता कभी कभी हो जाती थी, नारद जी का आश्वासन था कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा बच्चे को, इसलिए वो निश्चिंत थी। तो नारद जी उपदेश कर रहे थे, ये सातवें छठे और सातवें अध्याय में कथा है क्या क्या उपदेश किए। तो सुखदेव जी कहते हैं प्रहलाद महाराज गर्भ में सब सुन रहे थे, तो वे नारद मुनि की बात को 100% याद कर लिए, स्वीकार किए। और बेचारी कयाधु एक तो स्त्री थी और दूसरे उसको चिंता होती थी अपने पति के आगमन के लिए, तो वह उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाई। गर्भ में रहने वाला बच्चा भक्ति ग्रहण कर लिया, सारे उपदेश को जान गया, लेकिन मां नहीं जान पाई, क्योंकि उसको चिंता रहती थी अपने गर्भ की, अपने बच्चे की। जब चिंता किसी को रहेगी किसी अन्य वस्तु की, तो वो आदमी ज्ञान का उपदेश ग्रहण कर नहीं पाएगा। इसीलिए निश्चिंत होकर के ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सोचेगा अपने घर की चिंता करेगा, वहां कुछ ना हो जाए ना हो जाए, तो दिमाग बढ़ता है। दिमाग बढ़ जाने से सब बातों को व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाएगा। और गर्भ में रहने वाला बच्चा ग्रहण कर लिया, ये नारद मुनि का प्रताप था, उनकी कृपा थी। पर ये घटना किसी को पता नहीं चली कि नारद जी बच्चे को ज्ञान दिए, भक्ति दिए। हिरण्यकश्यपु तो था ही नहीं घर पर, वो तो मंदराचल पर था, तपस्या कर रहा था। और वहीं उसके मांस, खून, चाम सब कुछ चींटियां खा गई, तो हल्ला हुआ सब जगह की, वो तो मर गया, हिरण्यकश्यपु मर गया। वो मरा नहीं था, ब्रह्मा जी की कृपा से वो उससे भी ज्यादा जवान होकर के निकला। नारद जी की कृपा से कोई भी व्यक्ति महान भक्त बन सकता है। हिरण्यकश्यपु गुरुपुत्रों से पूछ रहा है कि प्रहलाद कैसे शिक्षा प्राप्त किया। वो लोग कह रहे हैं कि सरकार हम नहीं सिखाए हैं, कोई दूसरा नहीं सिखाया है। नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, इसकी मति नैसर्गिकी है, स्वाभाविकी है, स्वाभाविकी मति अपने आप है कृष्ण की भक्ति इसमें, जब हम क्या करें। अब आप तलवार रखिए, हम हमारा दोष नहीं है। हिरण्यकश्यपु पहले तो हंसा, बच्चों की बुद्धि ऐसे होती है, कोई कुछ सिखा देता है और सीख लेते हैं। वो जान गया कि ये विष्णु के पक्ष वाले सिखाए हैं, ये श्लोक ये कैसे बोल रहा है। जब उसे पता लगा कि ये गुरुओं ने नहीं सिखाया है, तब उन लोगों को सावधान किया, सम्यक विधाद्यताम बालो, गुरु गए है दुजात भी, आप लोग ले जाओ स्कूल बच्चे को और सम्यक विधा देता हूं, इसको ठीक से पढ़ाओ, दिन रात केयर करते रहो, कोई दूसरा न आवे विद्यालय में। हमको शंका है कि विष्णु का पक्षपाती वैष्णव कोई न कोई सिखाने आता होगा, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। हिरण्यकश्यपु मानता था मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, अवश्य किसी वैष्णव की चाल होगी, कोई आता होगा IYF से, कोई आता होगा जरूर सिखाने, कॉलेज प्रीचिंग प्रोग्राम करता होगा, कोई सिखाया होगा जरूर। इसीलिए सम्यक विधार देता हूं, ठीक ठीक आप लोग पढ़ाइए, जो उचित बात है वही पढ़ाइए। ये क्या अंटसन सिखा दिए, विष्णु की भक्ति और भगवान का नाम लो, ये बहुत फालतू बात है और आसार। जब गुरुपुत्रों ने बताया कि सरकार हम नहीं बताए हैं इसको और कोई भी नहीं आया है, जब विश्वास हो गया तब हिरण्यकश्यपु पूछता है प्रह्लाद से भी, नचेत गुरु मुखियम ते कुतो अभद्रा सती मति। जब गुरु के मुख से तुम्हें नहीं सुने हो, ये पढ़े नहीं हो, तो तुम्हारी ये असति और अभद्रा मति कैसे हो गई, तुम्हारी ये कंडम बुद्धि कहां से हुई। असति और अभद्रा मति ये तो बाद में पूछेगा, पहले गुरु लोगों कहा कि इसको ले जाइए स्कूल में ही और ठीक से पढ़ाइए, तो लोग ले गए, वो लोग बड़े दुखी थे, बड़े डिस्टर्ब थे, अरे आज तो राजा छोड़ दिया हमको, लेकिन ऐसी बात कहता रहेगा तो जान मार देगा हमारी। तो ले जाकर के प्रह्लाद महाराज से लोग पूछने लगे, प्रह्लाद तुम्हारा कल्याण हो, भद्रम ते, आज स्पेशल मिठाई मंगाए हैं तुमको, तुम्हारी इच्छा के अनुसार हम खाने को देंगे, लेकिन बेटा हम गुरु हैं, एक बात पूछ रहे हैं, ये जो आज राजा के पास तुम श्लोक बोले, ये कौन सिखाया, सत्यम कथया माम रसा, सांच बोलना झूठ नहीं, ये कौन श्लोक सिखाया? श्री प्रहलाद ने कहा, उन्होंने पूछा कि अन्य बच्चों की बुद्धि ठीक है तो तुम्हारी विपरीत बुद्धि कैसे हो गई, विष्णु भक्ति की बात कहां से आ गई? तो प्रहलाद जी कहे कि हमारी जो बुद्धि है वो बिना भगवान की कृपा के नहीं आती है, वही विष्णु जब अनुव्रत अनुकूल होते हैं तब जीव में ऐसी बुद्धि आती है, वही भगवान विष्णु मेरी बुद्धि को फेर रहे हैं। जैसे चुंबक के सन्निधि में आ जाता है कोई लोहा तो लोहा खींच जाता है, चला जाता है चुंबक के पास, ऐसे ही हमारे हृदय में विष्णु है और वही हमारी बुद्धि को फेर रहे हैं। तो उन्होंने साफ कहा कि हमारी बुद्धि ठीक है और जैसा भी है भगवान विष्णु ही हमारी बुद्धि को अपने में खींच रहे हैं, वे चक्रपाणी हैं, हाथ में सुदर्शन चक्र लिए रहते हैं, तो उन्हीं के अधीन सारा संसार है, सभी जीवों के हृदय में रहते हैं वे और उन्हीं से बुद्धि आती है, तो वही प्रभु हमारी बुद्धि को विपरीत कर रहे हैं, अपने चरणों में लगा रहे। तो ये गुरुपुत्र लोग कुछ नहीं समझे और सोचे कि थोड़ा धमका करके इसको पूछेंगे, तो कहने लगे आनीयताम अरे बेत्रम अस्माकम अजसस कर, ये तो हम लोगों का नाम बदनाम कर देगा। हिरण्यकश्यपु सोचेगा कि यही लोग सिखा रहे हैं, जरा छड़ी लाओ तो, अब ऐसे नहीं मानेगा। इसके लिए चौथी नीति ही काम करेगी, साम दाम विभेद और दंड, यही चार नीति है राजाओं की, तो चौथी नीति से काम होगा। अब साम नीति से काम नहीं होगा, प्रशंसा करने से ये नहीं बोलेगा, जब दो चार छड़ी लगेगी तब बोल देगा कि यह आया था। पहले वो लोग कहे कि हम तुम पर रंज नहीं है बेटा, तुमको केवल इतना ही बताना है कि कहां का आया था और नाम बता देना है बस, और सब काम तो हम लोग कर लेंगे, फिर तो कहीं का होगा उसको पिटवाएंगे राजा से कह करके, तुमको कुछ नहीं करेंगे, तुम केवल पता बता दो, एड्रेस बता दो, नहीं कुछ कहे। प्रहलाद महाराज कैसे नारद जी का नाम रखे, उन गाली देते तो नारद आता है राजा के पास, इतनी मीठी मीठी बात करता है और वह भक्ति सिखा दिया है राजा के विरुद्ध, इसीलिए प्रहलाद जी नारद मुनि का नाम नहीं बता रहे, भगवान को बताया उन्होंने भगवान, तो भगवान का क्या पता वो लोग जानते हैं, अभी तो असुर के गुरु थे तो असुर ही हो गए थे, ब्राह्मण तो नाम मात्र के थे। कहने लगे ये नालायक दैत्यों के चंदन वन में एक कांटों वाला बबूल कहां से हो गया है, डांट रहे थे। बेत लाओ, आनियतामरे बेत्रम, बेत लाओ मतलब छड़ी लाओ, बिना पीटे ये नहीं बताएगा कि दैत्यों का जो कुल है, खानदान है, वो चंदन वन है और उस वन को काटने के लिए विष्णु कुल्हाड़ी का काम करता है और उसमें ये बेंट का काम कर रहा है। इसको पता नहीं है कि सारे असुरों का वध करने का काम उठाया है विष्णु और विष्णु की मदद कर रहा है। जैसे कुल्हाड़ी केवल हो तो उससे कुछ काटने में दिक्कत होती है, लेकिन उसमें बेंट लग जाता है तो आराम से काट सकते हैं। तो ये दैत्यों के चंदन वन में ये बबूल हो गया है, कांटे वाला वृक्ष, इन नलायक, नलायित, नलायित, नलायित का अर्थ है नाल बन गया, बेंट बन गया। मैं पहले इसका अर्थ करता था नलायित, नलायक निकल गया, कुछ भी करें तो प्रहलाद महाराज नहीं बोले, वो ले गए अपने घर विद्यालय में पढ़ाने लगे। एक एक विषय कई बार सुन रहे थे, रटवा रहे थे, कैसे राजनीति चलाना चाहिए, कैसे दंड देना चाहिए अपराधी को, राजधर्म सिखा रहे थे और चार पुरुषार्थों में एक मोक्ष को छोड़ करके धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा दे रहे थे। कैसे स्वर्ग कमाया जा सकता है धर्म, लौकिक धर्म, और कैसे पैसा कमाया जाएगा ये शिक्षा दे रहे थे। अर्थशास्त्र पढ़ा रहे थे और काम शास्त्र, इंद्रिय भोगों को कैसे कुशलता से भोगेंगे, कैसे भोगों का संग्रह करेंगे यही सिखाते थे। जो सिलेबस था वही पढ़ाते थे, एक एक विषय को दस दस बार भी सुनते थे। ठीक से याद किया ना, प्रहलाद कहते थे हाँ, वो याद कर लेते थे, सुना देते थे, लेकिन मन में अच्छा नहीं मानते थे क्योंकि सब में यह शत्रु है, यह मित्र है, यही भाव रहता था, असद भाव, अभिनिवेश रहता था, तो इसको वे अच्छा नहीं मानते थे। सुना देते थे, पढ़ देते थे, लेकिन मन से अच्छा नहीं मानते थे। मन में क्या अच्छा मानते थे, वही जो श्लोक में बोले पहले, भगवान की भक्ति में ही मन को रखते थे। तो एक दिन फिर विश्वास हो गया कि अब पढ़ लिया है, खबरदार राजा पूछेंगे तो इन्हीं विषयों में से कोई बात बताना। अब तत्साध मन्य सुरवर देहिना भी श्लोक भूल जाओ, जब ठीक हो गए उनको विश्वास हो गया कि अब अच्छी बात बताएगा, तब ले गए हिरण्यकश्यप के पास। तुम तो निकट ही रहते थे राजभवन में, ले गए बच्चे को पहले माँ के पास, तो उसने प्रहलाद को उबटन लगाया, तेल लगाया, मालिश किया, स्नान कराया और तिलक किया। वही तिलक जो स्कूल में होता था यह तिलक नहीं। तो माता ने कपड़ा उपड़ा पहनाया बच्चे को ठीक से और भोजन कराया, तिलक दिया। इसके बाद पिता के पास भेज दिया, वो गुरु लेकर के गए। हिरण्यकश्यपु बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब बच्चा ठीक से पढ़ करके आया है, तो अपनी गोद में बैठा लिया, सिर सूंघने लगा प्रहलाद का। बहुत प्यारा बच्चा था, उसके आंखों से आनंद के आंसू निकल आए। प्रहलाद का स्पर्श करके जो पूछा, बेटा तुम जितनी पढ़ाई किए हो इसमें से सबसे उत्तम बात क्या है? अभितेषु श्रेष्ठम, अध्ययन में सबसे श्रेष्ठ क्या अध्ययन है? तो प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ करके पिता को प्रणाम करके और बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवद अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति की बात की। नौ प्रकार से भगवान विष्णु में भक्ति जो की जाती है, अर्पिता भक्ति, मैं इसी को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, सर्वश्रेष्ठ अध्ययन मानता हूं। सबसे श्रेष्ठ बेस्ट अध्ययन बताया उन्होंने। भगवान के बारे में सुनना, उनका नाम सुनना, उनके गुण सुनना, उनके परिकरों के बारे में सुनना, उनके धाम के बारे में सुनना, उनकी लीलाएं सुनना, यही सबसे श्रेष्ठ अध्ययन है। श्रवणम का अर्थ है कि कान से वो शब्द स्पर्श करना, सुनना, जो शब्द भगवान से जुड़े हैं, भगवान के नाम से, भगवान के लीला से, भगवान के रूप से, गुण से, तो उन शब्दों को सुनना चाहिए, इसको श्रवण कहते हैं। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी पढ़ाई यही है, भगवान के नाम को सुनना। यदि कोई दूसरा भक्त गा रहा है तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए, भगवान की लीला सुननी चाहिए, भगवान के गुण, भगवान के धाम, इसको सुनना। ये मन्ये अधीतम उत्तमम, ये सबसे श्रेष्ठ अध्ययन है। सबसे पहली भक्ति है भगवान के बारे में सुनना, उनका नाम सुनना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम सुनना। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के नाम को सुने। सबसे पहली भक्ति यही है, भगवान के बारे में सुनना चालू करना है। तो क्या सुनेंगे? पहले नाम, कृष्ण गोविंद हरि राम ये सब नाम है भगवान के। किसी के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो उसका नाम पहले पूछेंगे ना, क्या नाम है। नाम से ही उस व्यक्ति का ज्ञान हो सकता है। भगवान के बहुत से नाम हैं तो नाम को श्रद्धा से सुनना चाहिए, तब दूसरी भक्ति आएगी कीर्तनम। कीर्तन का अर्थ है भगवान के नाम गुण लीला आदि को बारंबार बोलना। जो बराबर बोला जाता है नाम गुण लीला तो उसको कीर्तन कहते हैं। जिह्वा से उच्चारण करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। और जब निरंतर कई दिन तक कई महीने और सालों साल जब भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का श्रवण करेंगे, तो अपने आप स्मरणम विष्णु स्मरणम भगवान का स्मरण होगा। तो यही क्रम है भक्ति का। सुनना चाहिए भगवान का नाम विशेष करके। और ये श्रीमद् भागवतम, इसमें भगवान की लीला है, भगवान के नाम गुण सब कुछ है, तो इसका श्रवण करना ये सबसे बड़ा अध्ययन है। श्रवण श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। स्मरण तभी आएगा जब हम भगवान का श्रवण कीर्तन करेंगे। कभी कभी भक्त पूछते हैं कि ये भगवान का स्मरण कम होता है, तो इसका उत्तर है पहले श्रवण कीर्तन करना चाहिए। श्रवण कीर्तन करने से तो भगवान का स्मरण अपने आप होता है, और उनका स्मरण होने लगेगा तो उनकी सेवा करने की इच्छा होगी। इसको पाद सेवनम कहते हैं। हमारी भावना होगी कि हम भगवान के दास हैं, और भगवान के सेवा की वासना आएगी हृदय में। तो मुख्य जोर होना चाहिए श्रवणम पर, भगवान का नाम भगवान का रूप गुण ये सब सुनना चाहिए। कीर्तनम कीर्तनम जैसे महामंत्र की 16 माला कम से कम करनी चाहिए, यह कीर्तनम के अंदर है। श्रवण और कीर्तन ये भक्ति महल के आधार हैं। भगवान के बारे में जपेंगे, उनका नाम जपेंगे, कीर्तन करेंगे और बारंबार सुनेंगे, तब भक्ति पुष्ट होगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कैसी स्थिति में नित्य कीर्तन करना चाहिए, क्या हमारा क्वालिफिकेशन होगा। तो वे कहते हैं तृणादपि सुनिश्चेना तरो रिव सही सुनना अमानिना मान देना कीर्तनियो सदा हरि। हम किस विधि से भगवान का सदा कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तनियो सदा हरि, भगवान उपाय बता रहे हैं त्रिनादपि सुनी चेन। एक घास के टुकड़े से भी अपने को नम्र रखना चाहिए। जैसे रास्ते में तिनका पड़ा हुआ है, अगर उस पर कोई मनुष्य पैर दे देता है या थूक देता है, पर वह तिनका कभी उठ करके प्रतिवाद नहीं करता कि तुम हम पर क्यों पैर रखा, हम पर क्यों थूक दिया है, चुपचाप सह लेता है, वो नम्र रहता है। ऐसे ही कीर्तन करने वाले भक्त को नम्र होना चाहिए। यद्यपि उसमें गुण होगा बहुत अधिक, लेकिन फिर भी कभी अभिमान नहीं आना चाहिए, अपने को नम्र रखना चाहिए। तिलने से भी अधिक नम्रता द्वारा, वृक्ष जैसा सहिष्णु होने द्वारा, और मान नहीं लेने द्वारा, और सबको मान देने से कीर्तन हो सकता है सदा। ये ध्यान देने योग है श्लोक, भगवान का खास रचा हुआ चैतन्य महाप्रभु। तीर्णादपि सुनी चेन, तीर्ण से भी अधिक नम्रता द्वारा। कितना नम्र है वो घास, कोई भी पैर दे देता है, वो कभी झगड़ा नहीं करता, कभी नहीं कहता कि मैं बड़ा व्यक्ति हूं, मैं वैष्णव हूं, तुमने मेरा अतिक्रमण क्यों किया। तीर्ण जैसे उठ करके झगड़ा नहीं करता है, उसे हवा उड़ा ले जाती है जहां वो चला जाता है। उस पर कोई पैर रखे या बैठ जाए या निष्ठीवन थूके, तब भी वो सह लेता है, प्रतिवाद नहीं करता है। वैष्णव को इतना नम्र होना चाहिए। यदि कोई कदाचित थूक दिया तो कभी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं पवित्र हूं, नहाया हूं, ये थूक दिया, डिस्टर्ब किया। ऐसा बन करके रहेंगे तब सदा कीर्तन कर पाएंगे, ऐसा हो करके तब कीर्तन करना चाहिए, यह भी अर्थ है। इसमें अन्योन्याश्रय संबंध है। ऐसा बन करके कीर्तन करना चाहिए, चाहे कीर्तन करना चाहिए ऐसा बनने के लिए, दोनों अर्थ है। दूसरा गुण बता रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, तरो रिव सहिष्णुना। तरो युवा वृक्ष की तरह सहिष्णु हो करके, वृक्ष जैसा सहिष्णु होना चाहिए। जैसे वृक्ष घाम सह लेता है, गर्मी सह लेता है, पर किसी व्यक्ति से सूख करके मर जाता है पर पानी मांगने नहीं जाता है। वृक्ष किसी से पानी मांगने नहीं जाता है, सूख करके मर जाता है, सूख जाता है, पर फिर भी पानी मांगने नहीं जाता है। और अपना फल या फूल पत्ता सबको देता है। वैष्णव का यह जीवन होना चाहिए, उसे मांगना नहीं है किसी से और सबको सब चीज देना है। वृक्ष लकड़ी देता है, मनुष्यों का भोजन बनता है उससे, फल देता है, पत्ता देता है, उसी पत्ते पर कितने मनुष्य रोज खाते हैं, दवाइयां बनती हैं वृक्ष से, सब दे रहा है, कितना सहन करता है। गर्मी के दिन में उसी वृक्ष की छाया में लोग रहते हैं और वृक्ष को काटते हैं, लेकिन कभी मना नहीं करता है, मत काटो। यहां तक कि अग्नि में जल जाता है वृक्ष, भोजन बनाता है हमारा, और सौ जला देता है, लकड़ी से सौ जलाया जाता है, जला करके वो शुद्ध कर देता है। तरो रपि सहिष्णुना, कुछ पाठ भेद है, उसको कहते हैं वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु, नहीं वृक्ष से ज्यादा सहिष्णु तो हो ही नहीं सकते, इसलिए तरो रिव सहिष्णुना, वृक्ष की तरह सहिष्णु होना चाहिए, यही पाठ उचित है। वृक्ष जितना सहन करता है उतना सहन करना चाहिए। बच्चे ढेला मारते हैं वृक्ष पर ढेला मारने वाले को क्या देता है? फल। और यदि वैष्णव है तो उसको कोई एक तमाचा मार भी दिया तो उसका फर्ज ये नहीं है कि फिर उत्तर में चमाचा चलावे, सह लेना, ये प्रैक्टिकल शिक्षा है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये तो चैतन्य महाप्रभु उस समय के वैष्णवों को शिक्षा दिए, सब समय के लिए वैष्णवों के लिए है। यदि आप विवाद में पड़ेंगे, झगड़ा में पड़ेंगे तो भगवान का कीर्तन नहीं हो पाएगा, अतः कीर्तन करने के लिए चाहिए कि हम किसी से विवाद न करें, किसी से झगड़ा न करें। झगड़ा नहीं होगा कब? जब हमें सहनशीलता आएगी, वृक्ष की तरह सहनशील। वृक्ष को काट लिया जाता है, कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन क्या वो गाली देता है? नहीं। एक बार एक व्यक्ति वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहा था, बैठा था, तब तक एक कुत्ता आया वहां हांफते हुए, वो गर्मी के कारण हांफ रहा था, तो उसको देख करके वो जो विश्राम कर रहा था वो डांटने लगा, दूर दूर कुत्ते को भगाने लगा। तो उस आदमी की छाया नहीं थी, छाया थी वृक्ष की, और कुत्ता आया है फिर भी मनुष्य भगाने लगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत अधम विचार है। दूसरे को सुखी देखने का व्रत लेना चाहिए, हम जितना सुख दे सके उतना देना चाहिए, और दूसरे को सुख मिल रहा है किसी और के द्वारा तो उस सुख में बाधा नहीं देनी चाहिए। यदि भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस श्लोक को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो कभी कोई विवाद नहीं होगा, कभी कोई संकट नहीं, भगवान की भक्ति निर्बाध रूप से हो सकती है। तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना और किसी से भी मान न ले अमानिना। कभी अपने अंदर ये भावना आवे कि मैं बड़ा हूं, मुझे कुछ मिले, मेरा सम्मान होना चाहिए, मुझे आदर मिलना चाहिए, और इसके साथ मान देना, मान देना सब समय दूसरे को सम्मान देना चाहिए, आदर करना चाहिए। दूसरे को आदर देंगे और स्वयं मान नहीं चाहेंगे तब कहाँ है कलह, झगड़ा कहाँ है? समाज में केवल शांति ही शांति रहेगी। सारे कलह का मूल है कि हमारा आदर नहीं हुआ, हमको सम्मान मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बड़े कुल का हूं, मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं सुंदर हूं। इसी मान के कारण भगवान शिव का झगड़ा हो गया अपने ससुर से। उनके ससुर दक्ष प्रजापति हैं, वे प्रजापतियों के नायक बना दिए गए थे ब्रह्मा जी के द्वारा। तो उस यज्ञ हो रहा था, उस सभा में ब्रह्मा जी गए थे, भगवान शिव भी। तो दक्ष प्रजापति प्रवेश किए उस सभा में, तो सब लोग उठ करके प्रणाम किए उनको, प्रजापति लोग। वे अपेक्षा करने लगे कि हमारा दामाद जो शिव जी हैं, वो हमारा दामाद हमको प्रणाम करेगा, यह अपेक्षा थी। लेकिन वे नहीं उठे, शिव जी नहीं उठे। तो दक्ष प्रजापति अपने पिताजी को, ब्रह्मा जी को प्रणाम किए और जब बैठे कुर्सी पर तो देखे कि सामने ही ये दामाद बैठा हुआ है। लेकिन दामाद का आचरण अद्भुत है, वे उठे नहीं ससुर को देख करके, उठे नहीं और प्रणाम भी नहीं किए। अगर बैठे बैठे भी कह दिए होते हरे कृष्णा तब भी दक्ष प्रजापति कुछ संतुष्ट होते, लेकिन कुछ नहीं बोले। इस पर देखिए दोनों तरफ से गड़बड़ हो गया। भगवान शिव प्रणाम नहीं किए, व्यवहार में कुछ भी है, ये भगवान है, लेकिन आखिर व्यवहार में दामाद है ना, ससुर को प्रणाम करना चाहिए था, नहीं किए। तब ससुर भी गर्म हो गए, ये हमको प्रणाम नहीं किया, हमारी बेटी से विवाह किया है, इसकी आंख बंदर जैसी है, ये श्मशान में रहता है, घर नहीं बांधा है, नंगे रहता है, मैं केवल ब्रह्मा जी के कहने से विवाह कर दिया इसका अपनी बेटी के साथ। लगे क्या क्या बड़बड़ बोलने, अंत में बात खराब हो गई, यहां तक पहुंच गए उन्होंने साप दे दिया शिव जी को कि इसको यज्ञ में कोई अंश नहीं मिलेगा, यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। मतलब उन्होंने ये कह दिया कि आज से इसको वेतन नहीं मिलेगा जो स्वाभाविक वेतन मिलता है, तब फिर खड़ा हो गए नंदीश्वर जी और वे बोलने लगे कि ये ब्राह्मण सब भिखमंगे हो जाएं जो शिव जी की निंदा करते हैं। जब नंदीश्वर खड़े हुए तो इधर भृगु जी बहुत बड़े प्रतापी ऋषि खड़े हुए, वो कहने लगे कि शंकर के भक्त सब पाखंडी हो जाएं, इन लोगों को ज्ञान न हो, जटा धारण करें और भक्ष भक्षण करें, इस तरह से साप देते गए ब्राह्मणों के तरफ से। भृगु जी थे और शंकर जी के तरफ से नंदीश्वर जी थे। बहुत बहुत साप पर साप, वो साप देते थे तो फिर ये साप देते थे, बहुत साप बाजी होने लगी। अंत में भृगु जी ने कहा, अरे दुष्ट, तुम ब्राह्मणों की निंदा कर रहे हो, ये ब्राह्मण ही वेद पढ़ते हैं और संसार में सनातन धर्म की स्थापना करते हैं, रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। इस पंथ में भगवान जनार्दन ही प्रमाण है, भगवान का नाम ले लिए। जब भृगु जी भगवान का नाम लिए कि प्रमाण भगवान विष्णु है, तब शिव जी ने सोचा कि अब नंदीश्वर कुछ न बोले, नहीं तो भगवान का अपराध होगा। तो भगवान शिव उठ करके चल दिए। तब इसके बाद वो लोग उठ करके सब गए। उसी समय से अब शिव जी से और दक्ष प्रजापति से आपस में न्योता हकारी बंद है। अब न बेटी को बुलाते थे न जाते थे और उतना ही तक समाप्त नहीं हो गया। वो बहुत बड़ा यज्ञ किए अपने यहां, दक्ष जी सभी देवताओं को बुलाए और खास अपने दामाद को निमंत्रण नहीं दिए, अपनी बेटी की को याद नहीं किए। तो देवता लोग जब जा रहे थे यज्ञ में तो कैलाश होते हुए विमान जा रहा, तो विमान को देख करके और लोगों के शान शौकत को देख करके, कितना अच्छा अच्छा कपड़ा पहनकर जा रहे हैं, अलंकार पहनकर जा रहे हैं, और उनकी स्त्रियां गीत गाती हुई दक्ष के यज्ञ में जा रही थी, तो माता सती बात करती हैं भगवान शिव से। उनको पता लगा, वो लोग पंपलेट वम्पलेट गिराए होंगे दो चार कैलाश में। तो सती कहती हैं शिव जी से कि आपके ससुर, मतलब मेरे पिता के घर पर बहुत बड़ा यज्ञ महोत्सव हो रहा है जिससे कोई नाता नहीं, संबंध नहीं है, वे लोग भी यज्ञ में जा रहे हैं, तो आप भी चलिए यज्ञ में। वहां यज्ञ में जाएंगे तो हमारी मौसी आएंगी, उनकी मौसी दो थी, आकुति और देवहूति, ये प्रसूति की बेटी थी। मेरी मां मिलेगी, बहुत दिन हो गया मां से भेंट किए, वो स्वाभाविक बोल रहे थे सती। वहां बहुत से लोग आएंगे, हमारी बहने आएंगी, बहनों में मुख्य बहन जैसे अनसुईया आएगी, अरुंधति, ख्याति आदि लोग आएंगे, सबसे भेंट होगी, आप चलिए। तो भगवान शिव ने कहा, तुम ठीक कहती हो, जाना चाहिए बिना बुलाए भी, लेकिन फिर भी जहां कोई विरोध मानता हो तो नहीं जाना चाहिए। दक्ष प्रजापति हमारे ससुर हमसे विरोध मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं होगा। और सती जी तर्क करने लगी कि क्या हो जाएगा, आखिर ससुर है ना, वहां आप चलेंगे हमको बहुत सा उपहार मिलेगा, वहां चलिए, आपको इतना द्वेष नहीं मानना चाहिए, अगर कोई बात से गलती हो गई कुछ बोलने में तो आप क्षमा कीजिए और चलिए। अंत में भगवान शिव उस बात से चिढ़े थे जो पहले यज्ञ में उनका अपमान हुआ था, कहे नहीं, दक्ष प्रजापति हमसे बहुत चिढ़े हुए हैं, हमको देखना नहीं चाहते, मैं तो यज्ञ में नहीं जाऊंगा, साफ बता रहा हूं, और तुम भी मत जाओ, सबके बाद ये देखो कि तुम्हारा विवाह किससे हुआ है, तुम्हारे पिता का तुमसे संबंध था, तुमसे प्यार करते हैं सबसे ज्यादा अपनी सभी बेटी से, लेकिन मुझसे विवाह हुआ है इस कारण से तुमको भी भूल गए, इतना बड़ा यज्ञ महोत्सव हो रहा है लेकिन तुम्हारे भी याद नहीं किए, तो अब पिता से सम्मान की आशा मत रखो, अगर मेरी बात को न मान करके तुम चली जाओगी अपने नैहर तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा वहां अपमान होगा और अपमान होगा तो तुम उसको सह नहीं पाओगी, फिर वो अपमान मरण का कारण हो जाएगा। लेकिन सती जी अपनी जन्मभूमि को देखने के लिए, अपनी मां को देखने के लिए इतना व्याकुल थे कि वे रोने लगी, परंतु भगवान शिव तो तस से मस नहीं हुए, तो सती जी निकल करके जा रही थी, और जब निकल करके बाहर होते थे तो उनको ध्यान आता था कि अरे इनको छोड़कर नहीं जाना चाहिए, फिर लौट आती थी, निकलती थी लौट आती थी, भगवान शिव कुछ नहीं बोल रहे थे, अंत में निकली और चल दी। तो भगवान शिव ने जबरदस्ती नहीं किया, वो सोच रहे थे कि जबरदस्ती रोक लूंगा तो यहां भी आत्महत्या कर सकती है, मर जाएगी, तो बेटर है वही जा करके मर जाए, जब मरना ही है दोनों हालत में तो वहीं पर मरे, नहीं तो यहां मरेगी तो कोई न कोई केस हो जाएगा। तो बेटर है वहीं मरे, जहां जन्म हुआ है वहीं पर, तो उन्होंने छोड़ दिया गई, और वहां किसी ने आदर नहीं किया, जब पिता ने भी प्रणाम का उत्तर नहीं दिया तब उसे ध्यान आया कि मैं शंकर कर कहा न मान, मैं भगवान शिव की बात पर ध्यान नहीं दी, यहां इतना अपमान हुआ, पिताजी ने समाचार नहीं पूछा, इसी पर वो मरने के लिए तैयार हो गई, और अग्नि की धारणा करके बैठी, शरीर में आग लग गई, वहीं मर गई, जल गई। देखिए ये इतना बड़ा कांड हो गया क्यों, यद्यपि भगवान शिव ईश्वर हैं लेकिन फिर भी व्यवहार में ये चूक कही जाएगी। भगवान भी दामाद बने हैं कई लोगों के, विवाह हुआ है, लक्ष्मी जिसे विवाह है, रुक्मिणी जिसे विवाह हुआ है, सीता जिसे विवाह हुआ है, कई पत्नियों से, लेकिन भगवान संपूर्ण संबंध को निभाते हैं। कहीं भी ऐसा प्रसंग नहीं आया कि वे अपने ससुर को प्रणाम न किए। भगवान यदि बच्चा है तो माता पिता की सेवा किए हैं, यदि दामाद हैं तो ससुर की सेवा किए हैं, मान दिए हैं। वर्णन है जब भगवान विवाह किए सत्यभामा जी से, तो कथा है कि 17 जीत जो सत्यभामा जी का पिता है, वो भगवान सूर्य के मंदिर में गया और सूर्य की उपासना किया, तो वहां उसको एक स्यमंतक मणि मिला। उस स्यमंतक मणि का ऐसा प्रभाव था कि जहां उसकी पूजा होती थी वहां वो 8 भर सोना नित्य उगल देता था। वह मणि ज्यों का त्यों रहता था, लेकिन लगभग 85 किलो सोना उसके आसपास हो जाता था जहां पूजा होती थी। ये बहुत बड़ा धन था। तो भगवान ने देखा, उस मणि को लगा करके वो आया उस मंदिर से, जो वो द्वारका से बाहर था वो मंदिर, तो मणि लगा करके आ रहा था, चमक रहा था सूर्य की तरह। तो जादवों ने भगवान को कहा कि लगता है कि आपका दर्शन करने सूर्य भगवान आ रहे हैं। तो बाद में जब 17 जीत आए तो भगवान ने उनसे कह दिया कि उनकी रक्षा के लिए कि इतना बड़ा धन आप लेकर के चलेंगे या घर में रखेंगे तो कोई न कोई मार करके छीन सकता है, आप पर संकट आ जाएगा, इसलिए इस धन को, इस मणि को आप राजा को दे दीजिए, उग्रसेन जी को। तो वो 17 जीत इतने लोभी थे, उन्होंने दुर्भावना किया भगवान पर कि ये लेना चाहते हैं मणि को, इसीलिए कह रहे हैं। लेकिन भगवान तो रक्षा के लिए कहे, इसको बैंक में रख देंगे तो खतरा नहीं रहेगा। लेकिन वो भगवान की बात नहीं माने और एक दिन उस मणि को दे दिया अपने छोटे भाई को, उसका नाम था प्रसेन। वो गले में लगा करके और जंगल में चला गया मृगया करने। तो एक सिंह देखा, उसको बहुत चमक थी मणि में, तो उस सिंह को भ्रम हो गया कि मांस है, तो मांस के भ्रम से सिंह उसको मार दिया प्रसेन को और मणि ले लिया। वो जब जा रहा था मांद में तब एक भालू ने उसका पीछा किया और सिंह को मार करके वो मणि ले लिया और मणि ले जा करके अपनी बेटी को दे दिया खेलने के लिए। तो इधर प्रसेन का पता नहीं लगा तो द्वारका में यही 17 जीत हल्ला किए, कि हमारे भाई को कृष्ण मार मार दिए क्योंकि वह सेमंतक मणि लेकर के गया था और कृष्ण ने टोका था हमको कि मणि दे दो, मैंने मणि दिया नहीं। इसी से लगता है निश्चित ही हमारे भाई का पता नहीं है तो कृष्ण मार दिए उसको और मणि ले लिए। कृष्ण पर हत्या का और चोरी का लांछन लगाए। तो भगवान चाहते तो ला सकते थे मणि, लेकिन फिर भी उन्होंने द्वारका के लोगों का मीटिंग किया और कहा कि चलिए आप लोग सब पता लगाए कहाँ मणि है और कहाँ प्रसेन है। तो सब लोग द्वारका के माने जाने लोग तैयार हो गए और भगवान के साथ चले। बोले घोड़े के खुर का निशान देखें कैसे कैसे गया है, घोड़ा पर गया था जंगल में, तो उस चरण चिन्ह को देख करके घोड़े के सब लोग गए। तो आगे जाकर देखे तो प्रसेन की लाश मिली, प्रसेन मरा हुआ पड़ा था। और प्रसेन को कौन मारा था, वो पंजे मिला करके देखे कि सिंह मारा है। और थोड़ा ही आगे गए तो देखे कि वो सिंह मरा है, सिंह मर गया है, उसको एक भालू मारा है, जमवान मारे थे। तो आगे जो देखे तो भालू एक गुफा में प्रवेश किया था। तो भगवान कहे कि आप लोग रुकिए यहीं और हम जा रहे हैं। उस भयानक गुफा में भगवान अकेले गए, उनको देख करके उनकी लड़की चिल्लाई, तो जमवान दौड़े और वो बूढ़े हो गए थे, उन्होंने पहचाना नहीं कि ये भगवान है, जबकि भगवान राम की सेना में वे युद्ध किए थे लंका में, पहचाने नहीं, भगवान से लड़ने लगे। 28 दिन युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध हो रहा था, मुष्टिका से मार हो रहा। जब भगवान की मुष्टिका से जमवान का शरीर शिथिल होने लगा तब वे पहचान लिए कि ये भगवान राम है। और भगवान की स्तुति किए और अपनी पुत्री को अर्पित किए भगवान को। भगवान फिर आए गुफा से बाहर तो द्वारका के लोगों के साथ फिर द्वारका में आए, मणि लेकर के आए। जमवान जी ने अपनी बेटी का विवाह भी भगवान से किया, उसका नाम जमवंती है, और वो मणि दहेज में दे दिया। तो मणि लेकर के आए, सब बताए कि ऐसे ऐसे मणि मिला, ये भालू ले गया था, दहेज में दिया। तो फिर द्वारका में मीटिंग हुई सब लोगों की और उसमें भगवान ने बताया और सब लोग बोले कि ऐसे ऐसे मणि मिली है, प्रसेन जंगल में गया था, सिंह मार दिया। इस प्रसंग को सुनने पर कलंक दूर हो जाता है। तो मैं सुना रहा था कि भगवान अपने ससुर का कितना आदर करते हैं, तो सत्राजित बहुत लज्जित हुए। भगवान ने मणि ला करके सत्राजित को दे दिया, लेकिन सत्राजित इतना लज्जित थे कि भगवान पर वे हत्या और चोरी का कलंक लगाए थे, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान से किया सत्यभामा का। और मणि दहेज में कृष्ण को दे दिया। भगवान मणि लेकर के आए थे, वो उनको मिला था दहेज में, जमवान जी ने दिया था, लेकिन पुनः उसी मणि को सत्राजीत अपनी पुत्री के विवाह में दहेज दिए सत्यभामा जी के। तो वही और जब विवाह हो गया सत्यभामा जी से, तब सत्यभामा जी को लेकर के भगवान गए जागसेनी के विवाह में, द्रौपदी जी के विवाह में चंडीगढ़ गए। और फिर हस्तिनापुर गए वहीं से। तब तक इधर द्वारका में क्या घटना हुई, अक्रूर जी और कृतवर्मा ये दोनों मिल करके सतधनवा नामक एक यादव को उकसाए। पहले सत्राजीत ने सतधनवा के साथ सत्यभामा का विवाह करने को कहा था, वाग्दान दिया था, लेकिन कृष्ण से विवाह कर दिया तो इससे सतधनवा रंज हो गया और अक्रूर जी और कृतवर्मा उसको बहकाए कि सत्यभामा का विवाह तुमसे करने के लिए कहे थे वो बदल गए, तो तुम सतधनवा को लोग उत्साह कहे कि तुम क्यों नहीं सत्राजीत का वध कर देते हो। तो सतधनवा बहकावे में आकर के अक्रूर जी के और कीर्तवर्मा के वो सत्राजीत का वध कर दिया। भगवान को पता लगा, सत्यभामा जी हस्तिनापुर गई और रो रो करके कही कि पिताजी का वध इस तरह से कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण रोते हुए आए हस्तिनापुर से, द्वारका आए और पता लगाए, तो पता लग गया कि अक्रूर और कृतवर्मा सतधनवा को बहकाए और सतधनवा सत्राजीत का वध किया। तो भगवान इतना दुखी हुए, रो रहे थे अपने ससुर की मृत्यु का समाचार सुन करके। देखिए इस कथा में बहुत बड़ी शिक्षा है, लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ का परिणाम बहुत बुरा होता है। अगर सत्राजीत मणि दे दिए होते उग्रसेन जी को तो भाई नहीं मरा होता है, सिंह मार दिया उसको, भाई नहीं मरा होता। और फिर सत्राजीत भी नहीं मरे होते, ये मर गए मणि के कारण। सतधनवा मणि लेने के लिए उनको मार दिया। इसीलिए धन जो भगवान को भगवान की सेवा में देने के लिए है उसे दे ही देना चाहिए, नहीं तो बहुत अनिष्ट करता है। समंतक मणि प्रसेन को भी ले बिता, सत्राजीत को भी ले बिता और बहुत गड़बड़ी हुई द्वारका में। अक्रूर जी भी चोरी में फंस गए, वो भी द्वारका छोड़ करके भागे, वो बनारस के थे, पर उनका तो अच्छा स्वभाव था, वो हमेशा यज्ञ करते थे, दान करते थे। तो भगवान ने वो मणि उन्हीं के पास छोड़ दिया। तो श्री भगवान अपने ससुर का अंत्येष्टि संस्कार किए और सत्यभामा जी जहां कहती थी वहां वे गरुड़ जी पर बैठा करके ले जाते थे। भगवान बैठते थे गरुड़ जी पर और उनके गोद में सत्यभामा जी बैठती थी और कभी भी निराश नहीं किए। भगवान ले गए, स्वर्ग में जाने की इच्छा हुई तो वहां ले गए और सत्यभामा जी की इच्छा हो गई कि यहां से कल्प वृक्ष द्वारका में चाहिए। तो भगवान देवताओं से झगड़ा करके कल्प वृक्ष उखाड़ लिए, गरुड़ जी को कहे उखाड़ने के लिए, उखाड़ लिए वृक्ष। वो नर्सरी नहीं, पूरा तैयार वृक्ष उखाड़ लिए और लाए द्वारका। इनका व्यवहार ऐसा था, ऐसा नहीं था कि मैं ससुर के पास नहीं जाऊंगा और प्रणाम नहीं करूंगा क्योंकि ससुर एक साधारण प्रजापति है और मैं तो ईश्वर हूं। भगवान शिव का व्यवहार उटपटांग है लेकिन भगवान कृष्ण का व्यवहार बहुत सरल है, सुशील है। भगवान श्री राम कितना सुंदर बोलते हैं जबकि क्रोध से भृगुपति परशुराम जी आग बबूला हो गए हैं और भगवान राम बहुत मधुर बोल रहे थे, नम्र भाषा में बोल रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि ये तृणादपि सुने च न तरुर सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरी। तो ये व्यवहार भगवान चैतन्य महाप्रभु से सीखना चाहिए। ऐसा होने से समाज सुखपूर्वक रहेगा, कहीं कोई कलह नहीं, विवाद नहीं, अमर्ष नहीं। तो ऐसे भगवान की भक्ति हम कर पाएंगे। कीर्तनीय सदाहरी, अतः इस शिक्षा का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ने जैसा बनने के लिए कहा है हम वैसा बने। जय राधे, जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण।